Om Shanti.
24th October 1975.
जहाँ हद का अधिकार है वहाँ बेहद का अधिकार खत्म हो जाता है। अब बीती को बीती करके फुल स्टॉप लगाते जाओ। फुल स्टॉप बिंदी होता है। फुल स्टॉप नहीं लगाते अर्थात बिंदी रूप में स्थित नहीं होते तो आश्चर्य या कॉमा या क्वेश्चन लगा देते हो। आश्चर्य की निशानी क्या कहे? जो कहते हैं ऐसा यह होता है क्या? ब्राह्मणों में भी यह बात होती है। यह आश्चर्य की निशानी हो गई। यह भी नहीं होना चाहिए। यह क्यों हुआ? क्यों क्या कहना? यह क्वेश्चन हुआ। यह भी व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होने का आधार है। जो होता है उसको क्या करो? जो होता है उसको साक्षी हो देखो। साक्षी के बजाय आत्मा के साथी बन जाते हो। बाप के साथी के बजाय आत्मा के साथी बन जाते हो। साक्षी के बजाय क्या बन जाते हो? आत्मा के साथी। अच्छा, ऐसी बात है। मैं भी ऐसा समझता हूं। यह है सुनने का साथ और सुनाने का साथ। सुनने का साथ और सुनाने का साथ। कौन सा? अच्छा, ऐसी बात है। मैं भी ऐसा समझता हूँ। तो जहाँ आत्मा के साथी बने वहाँ परमात्मा के साथी कैसे बनेंगे? जितना समय आत्मा का साथी उतना समय उतना समय बाप के साथी नहीं बनेंगे। यह कौन सा योग हो जाता है? खंडित योग। खंडित चीज फेंकने वाली होती है। वही मूर्ति जो पूजने योग्य होती है जब वह खंडित हो जाती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो जहां भी जब योग खंडित तो यहां भी जब योग खंडित तो श्रेष्ठ प्राप्ति नहीं अर्थात वैल्यू नहीं। सदा के साथी अखंड योगी। अव्यक्त मुरली 24th October 1975। यहाँ का अनुभव वहाँ स्मृति में बल देता है। इसलिए मधुबन में आना जरूरी है। वहाँ प्रवृत्ति में रहते हो वह भी सेवा अर्थ घर समझेंगे तो गृहस्थी, सेवाधारी समझेंगे तो ट्रस्टी, ट्रस्टी में चारों ओर के कर्म बंधन खींचेंगे, सेवाधारी समझेंगे तो ट्रस्टीपन में मेरापन खत्म होगा, गृहस्थीपन में मेरापन होता है। मेरापन बहुत कैसा है? लंबा है। मेरेपन की साइज कितनी है? कितनी साइज है? कितनी माप नहीं सकते। जहाँ मेरापन है वहाँ बाप नहीं हो सकता। जहाँ मेरापन नहीं वहाँ पर बाप है। गृहस्थीपन में हद के अधिकारी बन जाते हो। मेरापन मेरा माना जाए, मेरे सुने जाए, मेरे प्रमाण चलना चाहिए। गृहस्थीपन में हद के अधिकारी बन जाते हो। जैसे कि मेरा माना जाए, मेरा माना जाए, मेरा सुना जाए और मेरे प्रमाण चलना चाहिए। क्यों क्यों? क्योंकि मैं इंचार्ज हूँ, क्योंकि मैं अनुभवी हूँ, क्योंकि मैं पुराना हूँ, क्योंकि तुम नए हो, क्योंकि तुम छोटे हो, क्योंकि तुम अभी अभी आए हो, क्योंकि तुम समझदार थोड़े कम हो, क्योंकि तुम अनुभवी नहीं हो, क्योंकि तुम हमारे अंडर हो, क्योंकि तुम क्या हो? देह, देह में हो और हम देह से परे। तुम अभी देहवान में हो, क्योंकि तुम अंडर ट्रेनिंग हो क्योंकि तुम ट्रायल पर हो क्योंकि तुम बुद्धू हो क्योंकि तुम अज्ञानी हाँ मेरी मानना मेरा माना जाए मेरा सुना जाए और मेरे प्रमाण चलना चाहिए। जहां हद का अधिकार है वहां बेहद का अधिकार खत्म हो जाता है। अब बीती को बीती करके फुल स्टॉप लगाते जाओ, फुल स्टॉप बिंदी होती है, फुल स्टॉप नहीं लगाते अर्थात बिंदी रूप में स्थित नहीं होते, या आश्चर्य या कॉमा या क्वेश्चन लगा देते हो। आश्चर्य की निशानी क्या कहे जो कहते हैं आश्चर्य की निशानी, ऐसा यह होता है क्या ब्राह्मणों में यह बात होती है? और आश्चर्य की निशानी, ये लोग भी ऐसा करते हैं? और आश्चर्य की निशानी, हाँ यहां पर भी ऐसा क्या आश्चर्य की निशानी? मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था यहां पर भी ऐसा होगा आश्चर्य की निशानी। इनको आश्चर्य की निशानी, अच्छा नहीं अच्छा हो तो वो एक्सक्लेमेशन मार्क आश्चर्य, हाँ इतने पुराने और ऐसा दूसरों को ज्ञान समझाने वाले और ऐसा अंदर एक बाहर दूसरे, हर व्यक्ति के दो दरवाजे होते हैं ऐसा कहते, एक सामने का दरवाजा एक पीछे का दरवाजा, सामने के दरवाजे में कुछ और भीतर के दरवाजे में कुछ और, जो है उसको छिपाए रखा है, जो दूसरों को सिखाते हैं वो खुद करते नहीं। जिसको बाबा ने कौन सी मुरली है 70 की मुरली है खौफनाक, बाबा ने कहा है अंदर एक बाहर दूसरे, दूसरों को समझाते हैं ये नहीं करना चाहिए और खुद वो करते हैं, दूसरों को शिक्षाएं देते हैं कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए और खुद वही करते हैं। कहां करते हैं? अंदर के दरवाजे में एक बाहर खलील गिब्रान नाम का एक व्यक्ति हुआ था कभी, खलील गिब्रान, उसने एक बहुत सुंदर चीज लिखी है। उसने कहानी लिखी है एक कुत्तों के बारे में, किसी गांव में बहुत सारे कुत्ते रहते थे और उन कुत्तों में एक जो कुत्ता था जो सबसे ज्यादा अनुभवी था, थोड़ा दार्शनिक प्रवृत्ति का था, फिलोसोफर नेचर, बाकी जो कुत्ते थे इतने कम पढ़े लिखे थे, परंतु ये वाला जो था इसने लगभग सभी शास्त्र अध्ययन कर लिए थे और उसका जो थिंकिंग का लेवल था वो थोड़ा उन कुत्तों से उठकर था, हायर लेवल का था। तो हमेशा वो कहता था कि तुम सारे जो कुत्ते हो, तुम्हारा जो संसार में मान कम है वो तुम्हारे भोकने की वजह से है। यदि तुम तुम्हारा भोकना कम कर दो तो हो सकता है कि तुम्हारा सम्मान संसार में बढ़ जाए। तुम्हारे भोकने की वजह से ही लोग तुम्हें नीच समझते हैं, छोटा समझते हो। जब देखो तो वे पोस्टमैन दिखा कि भोकना चालू करते हो, सन्यासी दिखा कि भोकना चालू करते हो, कोई जा रहा है तो भोकते हो, ये क्या तुम लोगों ने लगा रखा है? इस भोकने की वजह से ही तुम्हारी इतनी दुर्गति हुई है कि लोग तुम्हें छोटा समझते हैं। मनुष्य मनुष्य को जब कहता है, जब किसी को गाली देनी होती है तो तुम्हारा नाम लिया जाता है, तो तुम ऐसा नहीं करो। परंतु वो कुत्ते उसकी बात समझते ही नहीं है, वो कौन उसकी सुनते हो, सब लोग समझते ये बूढ़ा है, इसको थोड़ी ना कुछ समझ में आता है। परंतु नॉन सीरियस एटीट्यूड उसका बाकी लोग उसके तरफ। पर एक दिन फिर बाकी सब कुत्ते सोचते हैं कि हाँ इसकी बातों में कुछ तो दम है और हमें इसकी बातों को मानना चाहिए। तो जितने उस शहर के कुत्ते होते हैं एक मत से ये निर्णय करते हैं कि आज के दिन 24 घंटे बिल्कुल नहीं भोकना है हमको, तो कोई भी भोकता नहीं है। तो जब ये दार्शनिक कुत्ता जो आता है और देखता है कोई भी भोक नहीं रहा है, अब किसको सिखाए दिन भर, क्योंकि उसका टाइम तो सारा सुबह से लेकर शाम तक सिखाने में जाता है ना दूसरों को, कि तुम्हें भोगना नहीं है, तुम्हें भोगना नहीं है, तुम्हें भोगना नहीं है। तो सुबह से लेकर रात तक ढूंढता है, परंतु सन्नाटा, कहीं कोई भोगने की आवाज नहीं है। तो शाम तक उसको भी बेचैनी हो जाती है, किसको, जो दूसरों को सिखाता है कि तुम्हें नहीं भोगना है, और वो खुद इसलिए नहीं भोगता क्योंकि उसका समय ही सिखाने में जाता है, तो उसके लिए टाइम ही नहीं रहता है भोगने का। इसके लिए उसकी जो अंदर की अर्ज, अंदर की उसकी जो नेचर संस्कार है, वो दबा हुआ था उसके वजह से, सिखाने की वजह से। तो शाम तक वो परेशान हो जाता है, रात होती है तो ज्यादा ही परेशान हो जाता है, अब उससे रहा नहीं जाता है, और ऐसा भोगना चालू करता है कि इतना भोगता है कि जीवन में कभी उसने इतना भोगा नहीं था। तो जो बाकी कुत्ते कहीं कहीं छुपे थे इधर उधर, क्योंकि उनको भोगना नहीं था, बड़ी मुश्किल से दिन भर में कंट्रोल कर रखा था, तो सारे गांव में वो सारे बाहर निकलते और वो सारे भी भोगना चालू करते। तो ऐसे भोगने का आवाज नेवर हर्ड बिफोर, खलील गिब्रान ने लिखा है। संसार की हालत भी यही है, संसार के तथा कथित सो कॉल्ड कोट अनकोट धर्म नेता, धर्म गुरु, संसार के वो सारे धार्मिक व्यक्ति वही दूसरों को करने को कहते हैं जो खुद नहीं करते, और जब दूसरे करने लगते हैं तो उनके अंदर बेचैनी होती है, और फिर किसी कोने में छुप के जाके वो खुद भी वही करते हैं। ये धर्म की वर्तमान स्थिति है। व्यंग काव्य लिखा है ये उसने, व्यंग बांध छोड़े है इसमें, करारा व्यंग किया है समाज पर, धर्म पर, धर्म की व्यवस्था पर। आश्चर्य की निशानी क्या कहे, जो कहते हैं ऐसा यह होता है क्या, ब्राह्मणों में भी यह बात होती है, यह आश्चर्य की निशानी हो गई, यह भी नहीं होना चाहिए। अभी आगे, यह क्यों हुआ, क्यों, क्या कहना, यह क्या है क्वेश्चन, यह भी व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होने का आधार है। ये ऐसा क्यों करता है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, जो होता है उसको क्या कर दो, साक्षी हो, देखना है। साक्षी के बजाय आत्मा के साथी बन जाते हो, बाप के साथी के बजाय आत्मा के साथी बन जाते हो। अच्छा, ऐसी बात है, मैं भी ऐसा समझता हूं। यह है सुनने के साथ साथी, और सुनने का साथ और सुनाने का साथ। तो जहां आत्मा के साथी बन गए तो परमात्मा के साथी कैसे बनेंगे। जितना समय आत्मा का साथी उतना समय बाप के साथी नहीं, जब खंडित योग हो जाता है, खंडित चित फेंकने वाली होती है जो मूर्ति, वह मूर्ति जो पूजने योग्य होती है, वह जब खंडित हो जाती है तो उसको कोई वैल्यू नहीं होती। तो यहां भी जब कोई योग खंडित होता है तो श्रेष्ठ प्राप्ति नहीं, अर्थात वैल्यू नहीं, सदा के साथी अखंड योगी। 24 अक्टूबर 1975, जो होता है उसको क्या करो, साक्षी होकर देखो कैसे कैसे करें यह साधना, साक्षी की साधना, साक्षी भाव की साधना, प्रैक्टिस ऑफ डिटैच्ड ऑब्जर्वरशिप, प्रैक्टिस ऑफ विटनेसिंग, प्रैक्टिस ऑफ डिटैच्ड विटनेसिंग, देखना, विटनेस करना, इन्वॉल्व नहीं होना किसी में। ये धर्म की सबसे बड़ी साधना है, या फिर कहो अंतिम अवस्था है। चार अवस्थाओं से धर्म गुजरता है, चार अवस्थाओं से अध्यात्म गुजरता है। उस चार अवस्थाओं में अंतिम अवस्था जो है वो है साक्षी नहीं, साक्षी के भी अभी आगे एक अवस्था है। सबसे पहली अवस्था है अनकॉन्शियसनेस, बेहोश, दिन भर क्या कर रहे हैं पता ही नहीं, 90% मनुष्य जो कुछ करता है बेहोशी में करता है, उसे खुद पता नहीं वो क्या कर रहा है, बेहोशी है, अनकॉन्शियसनेस, ये पहली अवस्था है। इससे निकलकर जब वो कॉन्शियसनेस में आता है, ये सेकंड अवस्था है, होश है, पूरा होश नहीं है, केवल होश है थोड़ा थोड़ा, उसे कहा जाता है स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। पहला है एब्सोल्यूट अनकॉन्शियसनेस, संपूर्ण बेहोशी, संपूर्ण मूर्छा। कर रहा है क्योंकि आदत सी बन गई है, कर रहा है क्योंकि सब कुछ मैकेनिकल है, अपने आप हो रहे हैं सारे कर्म, हम अवेयर नहीं है उन कर्मों के। महात्मा बुद्ध का दिखाते हैं ना, बैठे हुए हैं और एक मक्खी आई तो तुरंत हाथ गया और उस मक्खी को मारा, थोड़ी देर के बाद बैठे हैं कोई मक्खी नहीं है फिर भी हाथ लेके गए मक्खी के पास, मक्खी है नहीं। आनंद पूछता है ऐसा क्यों, वो कहते हैं पहले बार जो कर्म किया था वो बेहोशी में हो गया, मैं ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहता जो बेहोशी में हो, हर चीज जो करना चाहता हूं कंप्लीट अवेयरनेस में, कंप्लीट होश में। इसके लिए वो गलती सुधारने के लिए अभी इस बार प्रैक्टिस के लिए इधर लेके गए ताकि वो कर्म भी होश में हो। फर्स्ट स्टेज है बेहोशी, मूर्छा, अनकॉन्शियसनेस, अनअवेयरनेस। सेकंड स्टेज कॉन्शियसनेस, जिसमें थोड़ा होश है। लास्ट स्टेज है कंप्लीट अवेयरनेस, लास्ट स्टेज है कंप्लीट होश। सेकंड स्टेज और लास्ट स्टेज के बीच में एक पुल है, उस तक पहुंचाने वाला, वो है विटनेस, वो है साक्षी भाव। कॉन्शियसनेस से कंप्लीट अवेयरनेस तक, क्योंकि साक्षी भाव ये कंप्लीट अवेयरनेस नहीं है, वो भी बीच का पुल है। तो साक्षी भाव हमको ले चलता है कंप्लीट अवेयरनेस में। कंप्लीट अवेयरनेस में एक ही है, साक्षी भाव में फिर भी दो है, वो और मैं, वो और मैं अलग हूं। कंप्लीट अवेयरनेस में वो दो भी समाप्त हो जाता है। जय कृष्णमूर्ति उसको कहते हैं द ऑब्जर्व्ड एंड द ऑब्जर्व्ड, द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व्ड बिकम वन। देखने वाला और जो देखा जा रहा है वो एक होते हैं, एक हो जाता है। वो लास्ट स्टेज है कंप्लीट अवेयरनेस। अनकॉन्शियसनेस में मैक्सिमम मानवता जो जी रही है अनकॉन्शियसनेस में जी रही है। उसमें से उठकर कुछ कुछ अध्यात्मवादी बाहर आते हैं, थोड़ा सा होश में आते हैं, जहां पर जिज्ञासा करने लगते हैं कि मैं देह नहीं हूं, देह से भी परे कोई सत्ता है। थोड़ी सी झलक आत्मा की, थोड़ी सी झलक उस चेतना की, उस चैतन्यता की, थोड़ी सी झलक मृत्यु के समय, थोड़ी सी झलक दुख के समय, थोड़ी सी झलक जब अथाह कहीं से धोखा मिलता है बीमारी के समय, पता चलता है कि जीवन इस देह से भी परे कुछ है। वो अवेयर होश की अवस्था है थोड़ी। उसके भी आगे फिर जब साधना करने लगता है मेडिटेशन, वो है थर्ड स्टेज विटनेसिंग, साक्षी भाव, साक्षी की साधना, डिटैच्ड ऑब्जर्वरशिप, कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं होना है। लास्ट स्टेज है अवेयरनेस। अवेयरनेस में दो खत्म हो जाते हैं, एक रह जाता है कंबाइंड एब्सोल्यूट अवेयरनेस, टोटल अवेयरनेस, जिसमें व्यक्ति ऐसे जी रहा है साक्षी भाव के भी आगे एब्सोल्यूट अवेयरनेस में, वहां पर कोई भी गलती नहीं हो सकती व्यक्ति से। तो यहां बाबा कह रहे जो कुछ होता है साक्षी होकर देखो, ऐसा कुछ लगे ही नहीं कि ये नया है, ऐसा कुछ हो ही नहीं कि जो देखकर आश्चर्य हो, ऐसा कुछ हो ही नहीं, ऐसा क्यों, ऐसा क्या, ऐसा इसलिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंप्लीट विटनेसिंग, उसका एक अभ्यास है बैठना और प्रकृति को देखना, जैसे नदी के किनारे बैठे हैं और नदी को देख रहे हैं, नदी बह रही है, नदी में पत्ते बह रहे हैं, साक्षी होकर देख रहे हैं, नदी में एक लकड़ी का वुड लॉग, लॉग को क्या कहते हैं हिंदी में, टुकड़ा, कुछ और कहते हैं सिला, लकड़ी बह रही है, उसको भी साक्षी होकर देख रहे हैं। एक तिनका जा रहा है, उसको भी साक्षी होकर देख रहे हैं। हम कर कुछ भी नहीं रहे, चीजें बह रही है, हम देख रहे हैं। वहां से एक डेड बॉडी गुजर रही है, उसको भी साक्षी होकर देख रहे हैं। वहां से एक व्यक्ति स्विमिंग कर रहा है, तैर रहा है, उसको भी साक्षी होकर देख रहे हम यहां साक्षी का अभ्यास कर रहे हैं अभी। तो चीजें चल रही है, साक्षी होके उन्हें देखना, कहीं पर भी इन्वॉल्व ना होना। अगर वो कर्म भी करो बचाने का, उसमें भी साक्षी भाव, उसमें भी साक्षी भाव। बचाते बचाते हम, क्योंकि अगर बचाने का कर्म कर दिया तो फिर ये भाव आ जाएगा कि मैंने बचाया, वो भी डिटैच। ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, कर्म में अभी आ नहीं रहे। कर्म में आना तो आगे की स्टेज है, प्रैक्टिस ऑफ डिटैच्ड ऑब्जर्वरशिप, प्रैक्टिस ऑफ साक्षी भाव, प्रैक्टिस ऑफ साधना ऑफ साक्षी। नहीं, अभी हम खाली प्रैक्टिस कर रहे, किसी शक्ति की आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं। साक्षी भाव हमारा नेचुरल अभ्यास है, जैसे बचपन में हम साक्षी ही होते हैं, धीरे धीरे हमको सिखाया जाता है असाक्षी भाव, खींचा जाता है संसार में, घसीटा जाता है और सिखाया चलो। बच्चे में कितना अहंकार होता है, ये खिलौना मेरा है, मैं नहीं दूंगा, उसको सिखाया जाता है ये तुम्हारा खिलौना है, किसको देना मत, ये चॉकलेट तुम्हारी है, ये टिफिन तुम्हारा है, बाकी किसको देना मत। ट्रेनिंग दी जाती है उसे इन्वॉल्वमेंट की, उसको नहीं तो वो तो साक्षी होके जन्म लेता है, उसे ट्रेन करके घसीटा जाता है संसार में और बंधनों में बांधा जाता है। मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स, किसने कहा है ये? एक फिलोसोफर, उसने कहा है ना, तो किसने कहा है, बहुत प्रसिद्ध है फिलोसोफर्स की लिस्ट में एक जो फिलोसोफर है, लॉक, हाँ लॉक, फर्स्ट नेम भूल गया, LOCKE, लॉक, उसने कहा है। तो मनुष्य तो मुक्त ही जन्म होता है उसका, परंतु चारों तरफ बेड़िया है, जंजीरें ही जंजीरें है जो उसको बांधती है। तो साक्षी भाव की साधना के लिए ये एक अभ्यास है, बैठना और देखना नदी को, नदी में चीजें बह रही है, करना कुछ भी नहीं। एक दूसरा, आंखें बंद कर बैठना और देखना मन में क्या आ रहा है, क्रोध, लोभ, मोह, काम, प्रेम, परमात्मा प्रेम, जो भी भाव आ रहे हैं, दया, बदला। हाथ किसी को भी नहीं लगाना, आ रहे आने दो, जा रहे जाने दो। व्यर्थ, विकार, समर्थ, श्रेष्ठ, ऊंच नीच, जो भी आ रहा है उसको कुछ नहीं करना, आना आ रहा है जाने दो। ऐसा नहीं कि आ रहा है, अच्छा आ रहा है तो अटैचमेंट, अच्छे में भी अटैचमेंट है, बुरे से नफरत है, अच्छे से अटैचमेंट है, इससे भी साक्षी। किसी ने तारीफ की तो अच्छा लगता है कानों को सुनना, किसी ने ग्लानी की तो उससे दूर जाने की इच्छा होती है, उसके पास ठहरने की इच्छा नहीं होती है। जो महिमा करता है उसका एक एक शब्द खड़ा लगता है, जो महिमा करता है उसको सुनकर अंदर ही अंदर क्या होता है अरविंद भाई, गुदगुली, खुशी, एक बात ध्यान रखने जैसी है तारीफ के प्रति, तारीफ की जो कही गई, कोई भी व्यक्ति बिना स्वार्थ के तारीफ नहीं करता है। यदि कोई तारीफ कर रहा है मतलब ही इज गोइंग टू एक्सप्लॉइट यू सून, वो शोषण होने वाला है, वो किस रीति से, वो अलग अलग हो सकता है। हाँ, हर एक कुछ ना कुछ तो स्वार्थ है, तारीफ 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 पूरी हुई, हाँ अब मुझे ये प्रॉब्लम है, इसका कुछ करो। क्लास बहुत अच्छी है, क्लास बहुत अच्छी थी, ये थी वो थी, ऐसी थी वैसी थी वैसी थी, मुझे बैकएक है, ये रिपोर्ट्स भेज रहा हूं। अब इसका कुछ करो। तारीफ सुन हो रही है, मतलब खतरा है, खतरा आने वाला है। साक्षी अर्थात कहीं पर भी टच नहीं, स्तुति और निंदा, क्योंकि स्तुति में यदि अटैचमेंट हो गया तो निंदा में दुख होगा। इसके लिए साक्षी की साधना। तो चार स्टेजेस बताई। फर्स्ट स्टेज बेहोशी, जो व्यक्ति बेहोश है, मूर्छा में है, क्या कर रहा है उसे ही नहीं पता, मैकेनिकल हो रहा है क्योंकि आदत पड़ गई है। दूसरा, थोड़ा सा होश में आया है अभी, अब पता है बहुत सारी चीजें जो कर रहा है होश में हो रही है, थोड़ी थोड़ी होश में हो रही है, सब नहीं, थोड़ा होश थोड़ा बेहोश। योग में बैठते हैं तो थोड़ी थोड़ा होश आ जाता है कि मैं आत्मा हूं, योग पूरा होते ही भोजन को देखते ही बेहोश और खा लिया फटाफट फटाफट फटाफट, खाने के बाद में पता चला ज्यादा खाया तो फिर होश आ गया, फिर होश आएगा थोड़ा, फिर कोई आ गया मिलने कि पता है इससे ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, परंतु आते ही इतनी बातें कर दी कि पूरी बेहोशी, और फिर बेहोशी के बाद वो जाने के बाद में पता चला नहीं करना चाहिए था, होश आ गया, फिर होश, ऑल्टरनेटिंग होश एंड बेहोशी, होश बेहोश, होश बेहोश, बेहोश होश चालू ही है, कभी होश में जाता है बेहोश हो जाता है। यहां पर है मधुबन में भट्टी में है, मैं आत्मा हूं, धीरे धीरे चलने की स्टाइल, कोई अगर देर जोर से चले तो देखकर एकदम अंदर से ये लोग बहुत देहाभिमानी है, इतना जोर से हंसते हैं, योगी को इतने देर जोर से नहीं हंसना चाहिए, योगी को सौम्यता से हंसना चाहिए, ऐसे विचार चालू है। फिर जैसे ही यहां से उधर गए बाहर संसार में तो लोगों को बोलना पड़ता है थोड़ा धीरे हंसो, अट्टहास, बेहोशी, फिर होश। सेंटर पर जाते हैं तो सुबह सुबह होश, वहां से निकलते ही ट्रेन में बस में बेहोश, फिर घर पे पहुंचते होश, भोजन में फिर बेहोश, फिर होश ट्रैवलिंग में, फिर ऑफिस में जाते ही बेहोश, फिर होश बॉस से जब डांट पड़ती है थोड़ा सा होश आता है, फिर संसार व्यर्थ है, अनित्यम असुखम लोकम, कोई किसी का नहीं है इधर। फिर जाते हैं घर तो बच्चा पति पत्नी बहुत प्रेम करते हैं, फिर बेहोशी, प्रेम से बेहोशी आती है, फिर बेहोश, कोई दुखद घटना फोन पर सुनते हैं तो बेहोश, फिर से होश, फिर से टीवी देखते देखते बेहोश, उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक हो जाते हैं टीवी और मैं, फॉल्स तो होश बेहोश, होश बेहोश, ये सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज है पुल, जो है संपूर्ण जागरण है, लास्ट स्टेज, संपूर्ण जागरण अर्थात एंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, वो लास्ट स्टेज है स्पिरिचुअलिटी की, कंप्लीट अवेयरनेस, कंप्लीट एनलाइटनमेंट, कंप्लीट अवेकनिंग, संपूर्ण जागरण, जहां पर व्यक्ति क्योंकि विटनेस का अभ्यास इतना ज्यादा हो गया है कि अभी हर समय जागृत है, नींद में भी वो व्यक्ति जागृत है, सोया है ही नहीं कभी। या निशा सर्वभूता नाम, जो गीता में लिखा है, योगी अर्थात जो दुनिया वालों के लिए नींद है योगी के लिए वो दिन है, जो योगी के लिए रात है वो दुनिया वाले के लिए दिन है, ये बहुत गहरा श्लोक है। इसके लिए अब जो थर्ड स्टेज है उसकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, हमारी यही प्रैक्टिस सबसे कम है, हमारी प्रैक्टिस कौन सी ज्यादा है, योग में बैठकर मैं आत्मा हूं, मैं परम धाम में जा रही हूं, सूक्ष्म उतन में जा रही हूं, उधर से नीचे उतर रही हूं, इसको सकाश उसको सकाश, यहां सकाश वहां सकाश, ये तो कर रहे हो, परंतु साक्षी भाव ये प्रैक्टिस कम है। साक्षी की अपने आप में एक सेपरेट साधना है। साक्षी भाव संपूर्ण अवस्था भी है, वो जो अवेयरनेस है उसमें भी एक रीति से साक्षी भाव है थोड़ा, परंतु साक्षी भाव जो है ये अपने आप में एक प्रैक्टिस है।
साक्षी में सकाश भी होता है।
साक्षी में भी सकाश होता है, परंतु उसमें सकाश जिसको दे रहे उस पर ज्यादा ध्यान होता है। साक्षी में स्वयं पर ज्यादा ध्यान होता है। सकाश और साक्षी ये दो चीजें हैं। सकाश दे रहे उसमें जिसको दे रहे हमारा सारी ध्यान उस पर ज्यादा है। साक्षी में स्व केंद्रित हम ज्यादा है, बाहर की चीजों में केंद्रित इतना नहीं है। तो साक्षी का अभ्यास कैसे करें, अब ये प्रश्न है। फोर स्टेजेस ऑफ अवेयरनेस, साक्षी के लिए क्या किया जाए। साक्षी के लिए बाबा ने बहुत सारी चीजें कही है, उसमें से मुख्य पांच। पहला, इस संसार को, पहला है रंग मंच, पहला है स्टेज। ये संसार को ड्रामा समझो, मत अर्थात ये स्टेज है, ये सामने स्टेज है, ये रंग मंच है, ये व्यासपीठ है, ये स्टेज है, इस पर ये सारा खेल चल रहा है। ये यहां है, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं दर्शक, और ये स्टेज है जिस पर ये सब कुछ चल रहा है। ये पहला अभ्यास है कि संपूर्ण संसार स्टेज है, द होल वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल आर एक्ट्रेस एंड एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, शेक्सपियर की कविता है। ये संसार, संपूर्ण संसार एक स्टेज है, तो स्टेज देखना ऐसा स्टेज है जिसके ये स्टेज है, यहां पर्दा है, यहां पे बैकड्रॉप बैकग्राउंड, यहां पर जो कुछ भी हो रहा है इस स्टेज पर हो रहा है। एक्टर्स आ रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, बहुत सारे एक्टर्स है, एक कहानी है जो इनेक्ट हो रही है, एक कहानी है, इसमें अलग अलग लोग हैं, अलग अलग काम दिए गए हैं सबके। तो साक्षी के अभ्यास के लिए पहला अभ्यास है इस संसार को रंगमंच समझना, स्टेज समझना, व्यासपीठ समझना, एक थिएटर उस पे ये सब हो रहा है। फर्स्ट, सेकंड, ये संसार एक पर्दा है जिसमें मूवी चल रही है, वो है पर्दा, उसमें कुछ भी नहीं है, प्रोजेक्शन है, प्रक्षेपण हो रहा है केवल,
शैडो ऑन लाइट,
हाँ पीछे से डाल रहे हैं वो पर्दा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, मोबाइल का स्क्रीन, कंप्यूटर का स्क्रीन, कुछ भी हो सकता है यह पर्दा, परंतु ये पर्दा है जिस पर सारे देखा जा रहा है, सब कुछ उसमें दिखाई दे रहा है। कई बहुत कम लोग हैं, जैसे गांव में पहले के जमाने में टीवी तो था नहीं, तो कैसे देखते थे गांव वाले, कभी महीने में एक बार फिल्म आती थी तो बड़ा सा स्क्रीन लगाया जाता था, सारे छोटे बच्चे, सारे सारे पूरा गांव खड़ा बैठ जाता था और वो देखते थे, और देखते देखते कभी कभी बहुत खुश होते थे और कभी कभी सबकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, पूरा उसको इस सीन को भी साक्षी होकर देखो तो कुछ रो रहे हैं, माता है रो रही है, सीता को रावण ले जा रहा है, या सीता बहुत दुखी है उधर, तो बिल्कुल सब रो रहे हैं, और फिर राम जी आकर जीत रहे तो कितने खुश हो रहे हैं। तो इस संसार को इस पर्दे में देखना है, पर्दे में कुछ भी नहीं हो रहा है और जो हो रहा है वो झूठ है, ये प्रक्षेपण है, खाली प्रोजेक्शन है, उस पर्दे पर कुछ भी नहीं है, पर्दा खाली है, उस पर कोई कुछ बना है, कोई कुछ बना है, कोई कुछ बना है, हर एक का पार्ट अपना अपना है, वो अपने अपने पार्ट उसमें वो दिखाया जा रहा है। तो ये दूसरा अभ्यास, इस संपूर्ण सकल संसार को एक पर्दा समझना और पर्दे पर यह सारा खेल हो रहा है। दूसरा, पर्दा। तीसरा क्या? वो नहीं, हरेक का पार्ट नहीं, एक पहला बताया स्टेज, दूसरा बताया पर्दा, तीसरा फिल्म में चोरी हरी है। तीसरा है खेल का मैदान, तीसरा है मैदान। ऑडियंस बैठी हुई है चारों तरफ, ये है मैदान, चारों तरफ ऑडियंस है, बीच में मैदान है। क्या हो रहा है मैदान में? खेल हो रहा है। खेल में क्या क्या हो रहा है? हार हो रही है, कभी जीत हो रही है। ये हार और जीत का खेल है, ये स्मृति और विस्मृति का खेल है। आधा कल्प ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प ब्रह्मा की रात, आधा कल्प ब्राह्मणों का दिन, आधा कल्प ब्राह्मणों की रात, आधा कल्प ज्ञान, आधा कल्प भक्ति, आधा कल्प जय, आधा कल्प पराजय। खेल हो रहा है, मैदान के रूप में संसार को देखना है कि हम दर्शक है, हम ऑडियंस है और ये मैदान है। इस मैदान में ये सब हो रहा है। कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है, कोई दुखी हो रहा है, कोई तारीफ कर रहा है हमारी, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पर हमें अलाउड नहीं है, हम नहीं जा सकते उस मैदान में, हम बाहर है। ये अभ्यास के लिए, अभ्यास के लिए, ये हम अभ्यास की बात ही कर रहे हैं। कुछ भी हो रहा है हम उसमें जाएंगे नहीं, हम उसमें इन्वॉल्व होंगे नहीं, क्योंकि वो मैदान में हो रहा है, हम अलग है। और वो अपने आप को अलग कैसे करेंगे? नहीं तो सेवाएं बांध कर रखती है आत्मा को। ब्राह्मण आत्मा की बात करें तो पुण्य कर्म उसको पकड़ के रखते हैं, उसे अच्छे कर्म करने हैं, कल्याण करना है, बिगड़ी को बनाना है। संसार बिगड़ चुका है, वो सोचता है जैसे जो उसका कार्य है उसकी उत्कंठा होती है, होती तो है, पर जिसने ये कहा है कि तुम्हें उत्कंठा होनी चाहिए, वही वही कह रहा है कि साक्षी हो जाओ, वही कह रहा है कि तुम्हें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, वही वही ये भी कह रहा है, ये भूलना नहीं है, कहने वाला वही है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। हे अर्जुन, इस संसार के जन्म को, दुख को, जरा को, व्याधि को, सब कुछ साक्षी होकर देखो, इसमें कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं हो। इतना सिखाया उसको, फिर भी भूल गया था बाद में। हम अब स्थिति की बात नहीं कर रहे, हम अब पहले अभ्यास की बात कर रहे हैं, हम अभ्यास का बात कर रहे हैं। वास्तव में ऑडियंस भी हम है, एक्टर्स भी हम ही है, ये दूसरी बात है, उसकी बात अभी हम नहीं कर रहे। हम अभी बात कर रहे साक्षी की, प्रैक्टिस क्या करना है साक्षी के लिए। पहले दो अभ्यास बताए, पहला अभ्यास प्रकृति का, दूसरा अभ्यास अपने ही मन को देखना, और फिर अभी ये दूसरे पांच अभ्यास। पहला इस संसार को रंगमंच, दूसरा पर्दा, तीसरा मैदान, चौथा ज्ञान से रिलेटेड है, सीढ़ी का जो चित्र है, सीढ़ी आत्माएं उतर रही है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम, सारे उतर रहे हैं नीचे सीढ़ी। ये तो बाबा ने बताया, देखो सीढ़ी को, देखो कैसे आत्माएं नीचे उतरती है और कैसे चढ़ती है। और पांचवा चक्र, दोनों ही चक्र मेडिटेशन हॉल, एक तरफ इधर है, एक तरफ सीढ़ी है, वो सीढ़ी को देखना कि कैसे आत्मा है, साक्षी होकर देख रहे हैं सीढ़ी को, और इधर चक्र को देख रहे हैं कैसे चक्र का काटा घूम रहा है। तो ये सारे अभ्यास किसके हैं? साक्षी भाव के। इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि ये साक्षी भाव पुल है कॉन्शियस से अवेयरनेस तक का। सबसे पहली स्टेप कहां से? वो बेहोशी से पहले उठना पड़ेगा थोड़ा, और अपने हर कर्म को साक्षी होकर, जैसे अभी यहां बैठे हैं, परंतु शायद बहुत सारे बेहोश है। क्यों बेहोश है? क्योंकि मन कहीं और जा रहा है। होश अर्थात जो समय है वही रहना, जैसे मैं अभी सुन रहा हूं, बस प्रेजेंट में है, मैं अभी बोल रहा हूं, प्रेजेंट में हूं, बोल भी रहा हूं और साक्षी भी हूं। क्यों साक्षी हूं? क्योंकि मैं अवेयर हूं कि मैं बोलना और मैं, उसके बीच में भी एक बफर और गैप है कि ये हो रहा है, परंतु मैं साक्षी हूं। तो साक्षी की साधना करनी है। बाबा ने कहा साक्षी भाव की साधना करो, आश्चर्य कॉमा प्रश्न चिन्ह, उद्गार वाचक कुछ नहीं आएगा। फुल स्टॉप तभी लगेगा जब हम ये सोचेंगे कि ये सब मेरा देखा हुआ है, इसमें नया कुछ भी नहीं है, ये भी ऐसे करते वो भी ऐसे करते, ये सब बेहोशी अवस्था है। कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क, ये सारी स्टेजेस है अनकॉन्शियसनेस की। जब ज्यादा ज्यादा फुल स्टॉप लगेगा तब वो अवस्था होगी कॉन्शियसनेस की। जब बार बार साक्षी का अभ्यास होगा तो ही हम अपनी इस जीवन की समस्याओं को भी सॉल्व कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम उसके साथ एक है, अलग हो जाओ उससे। एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति का कल्याण करना चाहता है पर उससे सबसे ज्यादा अटैचमेंट है। माँ को अपने बच्चे से इतनी अटैचमेंट है इसलिए उस बच्चे का कल्याण कभी नहीं कर पाती, उसको अलग होना पड़ेगा अपने ही बेटे से तो ही उसका कल्याण होगा। अव्यक्त महावाक्य के बिना देहत के वैराग्य के सकाश की सेवा नहीं हो सकती। जिसको सकाश देनी है उससे संपूर्ण डिटैच चाहिए, व्यक्ति अलग चाहिए, उसमें जरा भी मोह जरा भी लगाव जरा भी आसक्ति यदि है तो सकाश पहुंच ही नहीं सकती। तो आज का अभ्यास क्या करना है सबको? साक्षी होकर। परंतु हाँ, कोई डूब रहा है, किसको मदद चाहिए तो ये अभ्यास है, हम कह रहे हैं ये अभ्यास है, बैठकर प्रैक्टिस करना। कर्म अलग चीज है, कर्म में साक्षी भाव ये उसके आगे की स्टेज है। कर्म में साक्षी भाव होना ये बहुत हायर स्टेज ऑफ अवेयरनेस है, वो तो धीरे धीरे वहां तक पहुंचना है, परंतु इतना एकदम तुरंत जम करेंगे तो नहीं होगा। ये तो तब करना है जब कोई परिस्थिति नहीं है, हम खाली बैठे हैं, देखना सबको ये हो रहा है। ओम शांति।